अयांश रूम में जल रही सारी कैंडल्स बुझाता है। दोनों की सांसें पूरे रूम में किसी रोमांचित संगीत की भांति फिर गूंजने लगी। गुलाब के फूलों से रूम महक रहा था, तो दोनों के बदन भी एक दूजे के प्यार की महक से महकने लगे। एक दूजे के प्रति मोहब्बत की तपिश ऐसी थी कि आज हर तरह की दूरी मिटने की कगार पर थी। जिस्म क्या, रूह से रूह भी मिलकर एक हो गई। एक दूजे की बाहों में सिमटते एक दूजे में दोनों पूरी तरह खो गए, समा गए। आरवी की आहें सिसकियां हवाला दे रही थी अयांश के प्यार को कि वो आज उस पर वो अपना सर्वस्व लुटा दे, और वो न्यौछावर किए जा रहा था। आरवी हक भी दे चुकी थी खुद पर उसे, और इजाजत भी, पर अयांश ने हक और इजाजत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। उसने आरवी को संभाला भी और कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। ऐसा होता तो वो बगावत कर जाती, पर आज बगावत की नहीं, मोहब्बत की रात थी। मोहब्बत की रात जो बीतते हर पल उन्हें एक दूजे के करीब ला रही थी। आज सारे सुख सारी खुशियां उनके हिस्से आ चुके थे। आरवी आंखें जब जब खुशी से भीगी, तब तब अयांश ने आंखों से छलके मोती रूपी आंसुओं को पी लिया और आरवी से वादा किया वो उसे कभी रोने नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं होने देगा, आंखों में आंसू नहीं आने देगा, हमेशा खुश रखेगा, हमेशा साथ रहेगा। आरवी ने उसे चूमते उसके वादों पर मुहर लगा दी कि उसे पूरा विश्वास है उस पर। धीरे धीरे रात भी पिघलने लगी, दो दिलों के अरमान पूरे होने लगे, तन मन की सारी ख्वाहिशें मुकम्मल होने लगी। ये सिलसिला रात भर चलता ही रहा। चांदनी रात, सरसराती हवाएं, चांद सितारे, सबके सब गवाह बन बैठे कि दोनों आज एक हो चुके। उनकी मोहब्बत, उनका मिलन सबने देखा, पूरी कायनात भी खुशी से झूम उठी थी। चांदनी रात गहरी होती चली गई, चांद और जगमग हो उठा, तारे टिमटिमाने लगे, हवाएं सरसर करती हुई रात भर लहराती रहीं। सुबह हुई तो सुबह का नज़ारा भी देखने लायक था। रिमझिम हल्की हल्की सी बरसात हो रही थी, मौसम प्यारा सुहावना प्रतीत हो रहा था। वहीं आज अंदर का नज़ारा भी बाहर के नज़ारे को खूब मात दे रहा था। कमरे का फर्श कहो या बिस्तर, फूलों की पखुड़ियां उनसे तितर बितर हो चुकी थी। वैसे ही बिखरी सी हालत हुई पड़ी थी अयांश आरवी की, जो ब्लैंकेट ओढ़े अभी तक बेड पर ही थे, पर लाजवाब लग रहे थे। बिखरा बिखरा सा बहुत प्यारा प्रतीत हो रहा था। अयांश आरवी को बाहों में भरे बेड पर लेटा हुआ छत की ओर एकटक देख रहा था। वहीं आरवी उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। अयांश का सीना क्या, उसका चेहरा भी उसके बालों से ढका पड़ा था। अयांश की आंखों में नजर आ रहा था तो ढेर सारा सुकून, और होठों की मुस्कुराहट रह रहकर बढ़ती चली जा रही थी। रात का आलम चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने दौड़ रहा था। तभी अयांश आरवी को आहिस्ता से बेड पर लिटा देता है। वो ऊंघ गई, पर गहरी नींद में थी तो वो उठती नहीं। ये देख अयांश मुस्कुराते उसके चेहरे से बाल हटाता है। जो ही बालों को हटाया उसने, उसका दिल धड़क उठा अपनी बेवी के खिले चेहरे को देखकर। नूर कहो या निखार, मानो आज आरवी के चेहरे से बेहिसाब सा टपक रहा हो। गालों पर छाई लाली उसे बेहद प्यारा और खूबसूरत बना रही थी। आज जो खूबसूरती थी, जो निखार था, मिसेस मेहरा पर छाया हुआ, उसके पीछे मिस्टर मेहरा का हाथ क्या, पूरे मिस्टर मेहरा थे, इस बात में कोई दोहराई न थी। आरवी ठीक सामने, वो उसके करीब, दिल धड़कने लगा, अरमान भी फिर से सुलगने लगे। बीवी का मासूम सा चेहरा उसके किसी चुंबन की भांति अपनी तरफ खींच रहा था। अयांश का मन तो कर रहा था कि रात भर आरवी के साथ जिस प्यार भरी दुनिया में उसने भ्रमण किया था, वो फिर से उस दुनिया की सैर पर निकल जाए, जिस अलग ही सी दुनिया में एक दूजे में खोकर वो गए थे, जो इस दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी, उस दुनिया में वो वापस चला जाए अपनी मोहब्बत, अपनी वाइफी के साथ, उनके प्यार की नैया मोहब्बत के सागर में इष्ट की गहराई तक पूरी तरह डूब जाए। पर उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था आरवी को परेशानी हो। वो थकी हुई है, ये भी उसे पता था। बीवी से प्यार था तो उसकी नींद भी तो उसे प्यारी थी। कहते हैं ना, पसंदीदा शख्स की हर चीज प्यारी लगने लगती है, उससे ही नहीं उसकी हर आदत से प्यार हो जाता है। वही अयांश मेहरा के साथ हो रहा था। भला कैसे वो आरवी के कंफर्ट को इग्नोर करके खुद की इच्छा को पूरा कर सकता था। उसकी इच्छा तो बाद में पूरी हो सकती है, अभी तो आरवी को आराम की जरूरत है। सोच वो आरवी को गले तक ब्लैंकेट ओढ़ाकर प्यार से उसका माथा चूम बेड से उतर गया। बेड से जूं ही वो खड़ा हुआ, उसकी नजर बेड के एक कोने में पड़ी हुई अपनी शर्ट पर नजर पड़ी, जो कि कल रात आरवी ने पहनी हुई थी। वो मुस्कुराते आरवी की ओर देखते उसे उठा लेता है और उस शर्ट को चूमते अपने सीने से लगा लिया और उसे ले जाकर अलमारी में हैंगर पर टांग कर रख दिया और फिर वॉशरूम में चला गया। अनिकेत जी सोनाक्षी जी साथ में बैठे चाय पी रहे थे। सोनाक्षी जी अनिकेत जी को मेहरा सदन चलने को बोल रही थी, पर वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने उनको समझाया भी, पर वो नहीं माने, जिद पर अड़े रहे। वो भी इस कदर की सोनाक्षी जी के कुछ भी कहने का उन पर असर नहीं हुआ और दोनों के बीच खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद अनिकेत जी ने सोनाक्षी जी की तरफ देखा, जो कुछ सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं पता? कह चुका हूँ मैं नहीं जाऊँगा। अयांश ने नहीं बुलाया तो? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। इस पर सोनाक्षी जी कुछ भी कहती अनिकेत जी का फोन बज उठा। वो सामने टेबल पर रखे हुए फोन को उठाते हैं और हेलो कहते कॉल पिक करते हैं। कॉल तारा की थी। तारा की आवाज सुन उन्होंने फोन तारा कहते सोनाक्षी जी की ओर बढ़ा दिया। सोनाक्षी जी फोन लेकर तारा से बात करने लग जाती हैं और अनिकेत जी वहां से उठकर चले जाते हैं। मेहरा सदन। राधे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। दिनकर जी अभी के साथ अपने रूम से बाहर निकले थे कि उनकी नजर अयांश पर चली गई, जो व्हाइट कोट पैंट पहने हुए जैसा ऑफिस या बाहर जाने के लिए रेडी होता है वैसे ही तैयार होकर नीचे आ रहा था। अयांश दिनकर जी के पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग अंशु। तुम आज जिम नहीं गए, ये वक्त तो तुम्हारा जिम से आने का है। तुम कमरे ऊपर की ओर इशारा कर, आ रहे हो? दिनकर जी ने हैरान से पूछा। अयांश कुछ कहता अभी हंसते हुए बोल पड़ा, दादू कभी कभी उठने में देर हो ही जाती है। मिस्टर मेहरा आज जिम से नहीं गए, राइट? अभी ने अयांश की तरफ देखा कि उसे अजीब नजरों से अपनी ओर देखता पाकर अभी की हंसी फुर हो गई और उसने थूक कटक लिया। वो मैं ये कह रहा था, रात देर से आए आप तो देर से सोए, देर से उठे तो जिम नहीं जा पाए। बस यही इतना कह अभी चुप हो गया। अयांश ने नामे सिर हिलाया और वो दिनकर जी से बोला, दादू मुझे देर हो गई थी कल घर आने में, और फिर मैं देर रात तक काम कर रहा था, बहुत थक भी गया था तो आंख देर से खुली मेरी, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इतना ही कह पाया हंस दिनकर जी ने ठीक है कहते हाँ में सिर हिला दिया और वो डाइनिंग टेबल की ओर चल दिए। अयांश की बात पर अभी को हंसी आ गई। वो नीचा सिर करके मंद मंद हंसने रहा था और सोच भी रहा था, आरवी के जैसे मिस्टर मेहरा को भी कहानी सुनाना आ ही गया, क्या मस्त झूठ बोला है, बात कुछ और ही थी, बताया कुछ और। वाह आरवी, मानना पड़ेगा तुमने अपने रंग में रंग ही लिया अपने पति को, ये तेरी जुबान बोलने लगे। तभी अयांश उसकी हरकत भांप गया। उसने अभी के कंधे पर हाथ रखा कि अभी डर गया और अयांश की ओर देखते जोर से बोला, दादू। दिनकर जी मुड़कर उनकी ओर देखते हैं। हाँ, अभी भागकर उनके पास जा पहुंचा। वो दादू भूख लगी है, चलिए हम नाश्ता करते हैं। दिनकर जी, उसी के लिए जा रहे हैं बेटा, आओ अंशु। अभी के साथ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते दिनकर जी ने अयांश को भी आने को कहा, पर अयांश मना कर देता है, दादू आप कर लीजिए ब्रेकफास्ट, मुझे भूख नहीं है। इतना कह अयांश बाहर जाने लगा कि जाते जाते राधे से बोला, सुनो। जी अयांश बाबा। आरवी सो रही है, उसे उठाना मत और ना ही कोई शोर करना, ओके?
राधी ने हाँ में सिर हिला दिया और अयांश बाहर चला गया। दिनकर जी ऊपर की ओर देखते हैं, सो रही है अभी तक, नाश्ते का टाइम भी हो गया, आज तो संडे भी नहीं है, कि अभी की हंसी छूट गई। दिनकर जी और राधे उसे हंसते देख हैरानी से एक दूजे की ओर देखने लगे। तभी अभी हंसते हंसते दिनकर जी से बोला, क्या दादू, राधे भैया का तो समझ आता है, इनकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, पर आपकी तो शादी हुई थी ना आपकी शंकुतला के साथ, शंकु के साथ, जो आपकी पत्नी थी, आप पति थे उनके, तो समझ जाइए ना दादू, मिस्टर मेहरा के लेट होने की वजह मिसेज मेहरा अभी तक सो रही, इसका कारण? कहते अभी ने भौहें उचकाई तो दिनकर जी मुस्कुरा दिए, समझ गया, ये हुई ना बात, कहते अभी दिनकर जी के गले जा लगा। वो उनसे दूर हुआ तो दिनकर जी उसके सिर पर चपत लगा लेते हैं। तभी राधे बोल पड़ा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्रमशः